यमुना तीरा वनचारी जय राधा माधव कुंजमी ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानञ्जनाशलाकय षट्स्वरमिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदामयं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सगणरघुनाथन्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं हरिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सगणललिता श्रीविशाखान्वितांश हे कृष्णकरुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे श्रील प्रभुपाद की हरे कृष्ण।
क्या चर्चा हुई थी पिछली बार
बोले आप लोग नोट्स नहीं बनाते कई लोग छुट्टियां चल रही नोट्स बनाए किसी ठीक है बोले बीजम अज्ञानता नहीं है अज्ञानता से बीज आता है बीज आता है जो वस्तु नहीं पाप का फल है जो दिखता है हाँ तो वो उसका प्रारब्ध है उसके पाप का फल दिख गया ऐसा पाप जो फलीभूत हो रहा है पर दिख नहीं रहा है और
किसी भी कार्य में उसकी करने में उसकी चेतना प्रबल होती
है चेतना क्या है स्लो कर दे चेतना बहुत बड़ा है
उठता है नया बीज पैदा करना नया बीज पैदा करना एक सब प्रकट होता है
ऐसा अपने आप लोगों ने कितने लोगों ने महसूस किया हम भक्ति में जब आते हैं तो पुरानी आदतें नहीं छोड़ पाते प्रवृत्ति नहीं छोड़ पा रहे हैं है ना कई बुरी आदतें हम छोड़ नहीं पा रहे कितना चाहते हैं कितना हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं भक्ति में कितना अच्छा इच्छा है बहुत अच्छी करने की लेकिन वो कूटम के कारण हम अभी भी वो गलतियाँ कर रहे हैं एक साइकिल एक फोर्स हमें करवाता है वो गलतियाँ छोटी छोटी गलतियाँ कर रहे हैं नहीं चाहते फिर भी है ना तो ये अभी कूटम समाप्त नहीं हुआ है ये बहुत समय लगेगा हो सकता है हमारे कई बीजम खत्म हो गया, कहीं पापम खत्म हो गया, है ना, प्याज लहसुन नहीं खाना, ये भी प्रकार का सिंफुल एक्टिविटी है पापम में, है ना, चार नियमों का पालन कर रहे हो तो पापम और बीजम शायद खत्म हो गया, और प्रारब्ध और कुटम में भी खत्म नहीं हुआ है। प्रारब्ध तो बहुत समय लगे, प्रारब्ध के लिए नया शरीर धारण करना पड़ेगा। उल्टा उल्टा इफेक्ट पड़ता है, हाँ खतरनाक है वो,
हाँ
इसलिए आपने देखा है कि कितने बार ऐसे, मुझे लगता है कि इस कौन में जितने हरे कृष्ण कीर्तन गाने वाले हैं उससे ज़्यादा सीडीज, ज़्यादा MP3s बिक रहे हैं मार्केट में, लेकिन फिर भी उनके जीवन में कोई परिवर्तन क्यों नहीं आ रहा है। बाहर से देख के लगता है कि अपने घर पर या अपने कार में बहुत सारी सीढ़ियाँ बजा रहे हैं, लेकिन उनके जीवन में उल्टा प्रभाव पड़ रहा है। आदतें वो छूटी नहीं, आदतें बुरी आदतें बढ़ रही हैं, कम नहीं हो रहा है, शराब पीना, स्मोक करना, ये सब बंद नहीं हो रहा है, तो उल्टा होना चाहिए ना। जैसे प्रभुपाद जी बोलते हैं कि भगवद गीता का अर्थ है कि भगवान का ज्ञान, भगवान के गीत, जैसे प्रभुपाद जी बोल रहे थे, भगवान का गीत जो है वो सुनकर भक्त बनना चाहिए। अगर भगवदगीता पढ़ते भक्त नहीं बन रहा है, कर्मकांडी बन रहा है या ज्ञानी बन रहा है, इसका मतलब भगवदगीता लिखने वाले में गड़बड़ है कुछ, जिसका परपोट लिखा है। लेकिन प्रभुपाद जी की भगवदगीता पढ़कर कितने विश्व भक्त बन रहा है, वैसे ही कि भगवान का कीर्तन सुनकर लोगों के मन में भक्ति करने की इच्छा होनी चाहिए, झुकाव होना चाहिए, इंक्लिनेशन होना चाहिए। अगर वो हो रहा है इसका मतलब है कि गाने वाला व्यक्ति का चेतना अच्छा था, है ना। तो फॉलोअर इकट्ठा नहीं करना है, इसलिए हमारे संस्था में प्रभुपाद जी बोलते हैं हमें बहुत सारे फॉलोअर नहीं बनाना है, हमें बहुत सारे भक्त बनाना है। फॉलोअर और भक्त में अंतर है। ऐसे कई एक मंदिर वृंदावन में मिलेंगे जहाँ पर जिनके जो जिन्होंने स्टार्ट मंदिर बनवाया है, जो बहुत बड़े ऐसे बड़े बड़े आचार्य मिलेंगे, लेकिन देखेंगे कि उनके यहाँ फॉलोअर बहुत है, बहुत भीड़ आती है, लेकिन शिष्य एक भी नहीं है, भक्त एक भी नहीं है, भक्ति कोई नहीं करता। ऐसे मंदिरों में क्या होता है, सिर्फ म्यूजिक सिस्टम बटन दबा दिया जाता है, कीर्तन चलता है और एक पुजारी रहता है जो कि सैलरी लेता है, पूजा करता है, है ना। तो ये कमर्शियल है, ये तो जैसे कंपनीज में एडवर्टाइजमेंट होता है, है ना, किसी कंपनी में प्रोडक्ट रखा है, डिस्प्ले कर दिया, अंदर सब कुछ खोखला है, है ना। आप बटन दबाते हो, एयर होस्टेस आती है, मे आई हेल्प यू, मुस्कुराती है, लेकिन अंदर से वो 10 बार दबाइए वो मे आई हेल्प यू भूलेगी, अंदर से इतना गुस्सा आएगी, वहाँ जाके केबिन के अंदर क्या बोलेंगे, वो 7 नंबर वाला बार बार बटन दबाता रहता है, दिमाग खराब हो गया, है ना। लेकिन भक्त ऐसे नहीं होते, भक्त जो अंदर से होते हैं वे बाहर से होते हैं, थैंक यू। भक्त का स्वभाव जो होता है अंदर बाहर एक ही होता है। जैसे हमारे गुरु महाराज जो हैं सोलन गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज, उनके बारे में भक्ति माधुरी गोविंद स्वामी महाराज ने बताया था, उनके गुरु भाई हैं श्री प्रभुपाद जी के शिष्य, उनके व्यास पूजा में कहा था कि साधुता का गुण कैसा है, बताया जाता है कि अंदर और बाहर एक ही हो। अंदर और बाहर का मतलब जैसे हम यहाँ बैठे हैं, तो यहाँ बैठे हैं जैसे बड़े सभ्यता से बड़े अच्छे से बैठे हैं, है ना, और घर में जाएंगे तो एक चारपाई के ऊपर पैर हो गए और यहाँ पर पानी ले आओ, चिप्स ले आओ खाने के लिए, आज मैं मूड में हूँ, है ना। तो यहाँ भक्त मिलते प्रभु जी प्रसाद मिलेगा, तो डुप्लीसियस माइंड है मानो। लेकिन जिसकी चेतना अच्छी होती है ना, वो हमेशा एक ही चीज़ करता है, व्यवहार एक ही चीज़ करता है। तो हमारे महाराज को जाकर देखेंगे तो अपने कमरे में भी वो वैसे ही बैठते हैं जैसे कि वो व्यास आसन में बैठते हैं या कहीं पब्लिक में बैठते हैं, वैसी बातें करेंगे, वैसी बैठने का ढंग है, वैसी खड़े का ढंग है, वैसी फ़ोन में बात करने का ढंग है, कोई अंतर नहीं है। खाने का ढंग कैसी है, मैंने कई बार बताया कि आप किसी मेहमान के यहाँ जाते हैं तो बड़े से बाउल में बहुत सारे चिप्स ला के देते हैं, अंकल चिप्स, और जब अंकल आंटी बैठ के खाते हैं तो वो कैसे खाते हैं, एक पीस लेते हैं और एक काटते हैं, हम गए थे वहाँ गए थे ऐसा हुआ फिर एक खाते हैं, है ना, बड़े से प्रेम से। घर में कैसे खाते हैं, उसको फाड़ते हैं, जो अंकल चिप का पैकेट रहता है ना उसको सब फाड़ देते हैं और पूरा हाथ जाता है, पूरा निकल गपर गपर खाते हैं, खाते ही नहीं खाते हैं। क्योंकि हम लोग दो जगह अलग अलग इंप्रेशन जमा सकते हैं, घर में कोई इंप्रेशन जरूरत नहीं है, बाहर तो जमा दो, पब्लिक समझिए कितना सभ्य व्यक्ति है। तो आपके जो डुप्लीसिस नहीं है, जितना प्योर है, जितना चेतना प्योर है, तो चेतना प्योर का मतलब समझ रहे हैं, बीच में जो दीवार है बाहर और अंदर की बहुत पतली रहेगी, ट्रांसपेरेंट रहेगी, समझ रहे हैं। आपके घर जो रहेंगे वो शीशे के रहेंगे, इसमें आप जो कर रहे हैं पब्लिक को दिख रहे हैं, लेकिन जब डुप्लीसिस रहते हैं तो उसमें ताला चाबी पर्दे दुनिया भर की चीज़ें, है ना, तो वो नहीं बनना हमें, ठीक है। और ऐसा कोई है भी तो उसका संग नहीं करना। बताते हैं जो व्यक्ति डबल माइंडेड होता है, उसको बोलते हैं ना जैसे दो मुहा सांप जो होता है, दो मुहा सांप का खतरनाक क्या बात बताओ, एक से दूध भी पी रहा होगा, एक से कहीं चल भी रहा तो दूसरे से डस सकता है वो, है ना। तो वो ऐसे बनने वाले व्यक्ति के साथ नहीं रहना चाहिए। क्या होगा सर व्यक्ति के साथ रहेंगे तो हम भी वैसे हो जाएंगे, हम भी वैसे हो जाएंगे। और जबकि सब कुछ छोड़कर हम लोग यही नहीं करने आए, यहाँ पर क्यों आए हैं, ताकि हम लोग प्योर बने। जो हम करते थे वो हमें अच्छा नहीं लगता। देखिए हर व्यक्ति ईमानदार व्यक्ति चाहता है, हर व्यक्ति सहनशील व्यक्ति चाहता है, चाहता नहीं चाहता। जैसे लगे कि एक स्त्री से पूछा कि आपको क्या चाहिए, बोले 1 करोड़ सैलरी वाला पति और जो गूंगा हो। क्या हो, गूंगा हो, बोले नहीं, मैं सुनाते रहूं वो चुपचाप सुनता रहे। हर व्यक्ति को ऐसी चाहिए, है ना, व्यक्ति को क्या चाहिए, जवाब ना दे, सहनशील हो, बहुत अच्छा प्योर रहे, सफाई करे, सब कुछ चाहिए। आप नहीं करना चाहेंगे। तो हम सब यहाँ क्या करने आए हैं, अच्छा बनने आए हैं, और वही संग बाहर करेंगे बुरे व्यक्ति का तो अच्छा कभी नहीं बन पाएंगे। साधु व्यक्ति, हर व्यक्ति ढूंढता है कि साधु कहाँ मिलेगा, साधु मतलब जिसमें सहनशीलता, है ना, दूसरों को अच्छे से मृदु बात करने का तरीका सब हो। लेकिन हम साधु नहीं बनना चाहते, कितनी बड़ी समस्या है। इसलिए भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर बोलते हैं, लाखों अरबों खरबों कनिष्ठ भक्त एक साथ मिलकर शुद्ध भक्त उसमें से कभी नहीं बनेगा। अगर लाखों अरबों खरबों कनिष्ठ भक्त एक जगह मिलेंगे और भजन कीर्तन करेंगे ना, तो शुद्ध भक्त कभी नहीं बनने वाला कोई इसमें से। एक शुद्ध भक्त जब तक नहीं उनके बीच में होगा तो शुद्ध भक्ति कहाँ से प्राप्त होगी। नहीं, आपके पास 100 का नोट होगा तो अपने 100 का नोट दे पाओगे। जिस किसी से मांगो, सब भिखारी हैं, सब बीच में भिखारी के बीच मांगने जाओगे तो क्या मिलेंगे, सिक्के मिलेंगे आपको एक दो। लेकिन कोई अरबपति आएगा उसी वही आपको लाखों करोड़ रुपये दे सकता है। तो इसलिए किसी भी स्थान में शुद्ध भक्त की उपस्थिति बहुत ज़रूरी है, और उसकी उपस्थिति से शुद्ध भक्ति हम करने लगते हैं। यानी शुद्ध भक्त का साथ देने से, शुद्ध भक्त के साथ रहने से शुद्ध भक्ति कर रहे हैं आप। शुद्ध भक्त नहीं है, ध्यान रखिए, आप शुद्ध भक्त नहीं होते हुए भी शुद्ध भक्ति कर सकते हैं, शुद्ध भक्त की सेवा में लगकर। जैसे प्रभुपाद जी के साथ जितने लोग लगे वो सब शुद्ध भक्ति करने लगे, और धीरे धीरे क्या हो गए, शुद्ध भक्त हो गए। जैसे लोहा आग नहीं होता है, पर आग के संपर्क में रहने रहने से वहाँ के गुण प्राप्त कर लेता है, पर जैसे ही वो अलग होता है तो फिर वो लोहा हो जाता है। इसलिए साथ रहने रहते हैं क्या होगा, वो गुण प्राप्त कर लेता है। तो चेतना बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन में। और क्या लक्ष्य होता है, हाँ, जो देने वाला व्यक्ति और लेने वाला व्यक्ति का चेतना अच्छा नहीं है देने लेने के बारे में तो गड़बड़ हो सकता है। और
पानी पीने में, झाड़ू लगाने में, मसाला पीसने में, पैदल चलना,
ये अनजाने में किए हुए पाप हैं, और जब हम लोग हरे कृष्ण मंत्र जपते हैं तो ये सारे पाप अपने आप नष्ट हो जाते हैं। ठीक है, और लेकिन अगर आप लोग नाम के बल पर पाप करते हैं तो नाम अपराध है। कौन सा नाम अपराध है? सातवां, सेवेंथ नंबर का है कि नाम के बल पर पाप करना। तो बताइए कि ऐसा समझ लीजिए कि पाप जो है वो अग्नि के, पाप जो है रुई के समान है, ढेर के समान। जैसे जीता मित्र वो बहुत अच्छी बात बता रहे थे इस संडे में, जैसे रुई का ढेर है उसको आग लगाना है तो हरि नाम जो है वो क्या है, अग्नि के समान है। तो रुई के ढेर में जब आप आग लगाते हो तो बहुत तेज़ी से जल जाता है, तो हरि नाम लेते हैं तो पाप सब नष्ट हो जाएंगे। लेकिन जब आप नाम के बल पर अपराध पाप करते हैं कि मैं रोज तो पाप कर दूंगा, लोग चार पांच मर्डर भी कर दिए, पैसे भी ले आए, लोगों को लूट लिया, हरे कृष्ण जप रहा हूँ, उस सारे पाप नष्ट हो जाएंगे सोचता हूँ, तो ये अपराध लग जाता है। अपराध एक जल के समान है, जब पाप के ऊपर जल गिर जाएगा या रुई के ऊपर जल गिर जाएगा तो अग्नि काम करेगी, यानी सारे पाप भोगने पड़ेंगे हमें, है ना। तो इसलिए सावधान साधु, सावधान। और क्या बातें थी?
सेवा करनी चाहिए, अथॉरिटी से
पूछनी चाहिए। कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास कोई सेवा नहीं है और हम बोलते सेवा ही नहीं कोई, यार सभी कर रहे हैं हमें क्या जरूरत है, है ना। हम तो सेवा करने वाले लोगों में से नहीं, हम करवाते हैं। तो ये सोच कि कभी लोग सेवा नहीं करते हैं, तो सेवा के बारे में खुद पूछना चाहिए भक्तों से, अथॉरिटी से पूछना चाहिए, कुछ सेवा है मेरे लाइफ में करना चाहता हूँ या चाहती हूँ। खाली नहीं बैठना चाहिए, भगवान की सेवा में किसी न किसी रूप में लगना चाहिए। बहुत सारी सेवाएँ अभी भी हैं, इतनी सारी सेवाएँ कि उसकी क्षमता नहीं है। प्रभा जी बोलते हैं कि अगर पूरे संसार की जीवात्माएं भी भगवान की सेवा में लगे सेवा समाप्त नहीं होगी, अभी भी ऐसी सेवाएँ हैं, सेवा ख़त्म नहीं हुई। हम खत्म हो जाएंगे पर सेवा नहीं खत्म होगी। सेवा मांगिए, अथॉरिटी से सेवा मांगिए, इतनी सेवाएँ मिलेंगी। अपनी क्षमता के अनुसार अगर हम सेवा करते हैं तो हम सुखी रहेंगे। जैसे कोई व्यक्ति 8 घंटे सेवा कर सकता है भगवान की, उसकी क्षमता है, अगर 7 घंटे भी करता है तो संतुष्ट नहीं होगा, याद रखना, उसके अंदर से खुश नहीं होगी। कहीं हम लोग हम दुखी हैं तो अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे हैं। अपनी क्षमता के अनुसार भक्ति करना ज़रूरी है, तभी भक्ति से संतुष्टि मिलेगा और प्रोग्रेस करेंगे। तो कैसे पता चलेगा हमारी क्षमता क्या है, कैसे पता चलेगा हमारी क्षमता क्या है? सेटिस्फेक्शन फील होने लगेगा। और स्पिरिचुअल मास्टर बताते हैं, सोशल मास्टर इसलिए तो बैठे हैं, आपको बताना चाहते हैं आपकी क्षमता क्या है, लिमिटेशन क्या है, रुक जाओ और आगे चलो बढ़ो। जैसे कैप्टन बताते हैं ना, बोट को दाएं मोड़ लो और तेज करो, स्लो कर दो, तो कैप्टन बोलते हैं तो गुरु कर्ण धारम, ये नाव रूपी जो शरीर है उसके जो जो कैप्टन है कौन है, गुरु। हम उसमें बैठे पैसेंजर हैं तो हमें गाइडेंस मिलेगा क्या क्षमता आपकी, कितना करना चाहिए कितना नहीं। तो महाराज जैसे बताते हैं कभी कभी कि प्रभु जी आप ज़्यादा कर नहीं रहे हैं, आप ज़्यादा कीजिए और बिजी रहिए। कभी कभी देख लगता है एक व्यक्ति 10 घंटे काम सेवा कर रहा है, उसको बोलते हैं कि और करो 2 घंटे, अब किसी को 2 घंटे बोलते हैं बस बहुत है, इससे ज़्यादा मत किया करो, आप भजन कीर्तन किया करो। तो गुरु बताते हैं कि क्षमता क्या है। और दूसरा चीज़ आप मैक्सिमम अपना करते ही करते रहिए, एक समय के बाद ऐसा लगेगा कि मैं इसे ज़्यादा कर नहीं सकता और मुझे सेटिस्फेक्शन शुरू हो गया, आनंद मिलने लगा प्रभु जी, अच्छा लगता है मुझे। एक ब्रह्मचारी मंदिर पर ज्वाइन किए थे, सुबह 10 बजे तक अपनी साधना करते थे, शाम को भगवद्गीता क्लास, गुरु आरती वगैरह अटेंड करते थे, गौर आरती वगैरह, प्रसाद पाकर सो जाते थे। तो सुबह 6 घंटा, शाम को 4 घंटा, 10 घंटा लगता था, लेकिन बिल्कुल संतुष्टि नहीं थी। तो एक बार मोहन रूपा गुरु जी के पास आए, बोले गुरु जी मुझे अच्छा नहीं लग रहा, मैं 6 महीना हो गया ज्वाइन किया मंदिर में, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो बोलते आप सेवा क्या करते हैं? बोले सेवा तो कुछ नहीं कर रहा, बस साधना करता हूँ सुबह और शाम। बोले सेवा कीजिए तो मधुसूदन पोजी के साथ बुक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जाइए। तो उन्होंने बुक डिस्ट्रीब्यूशन जब शुरू किया 3 घंटे, तो इतना चेहरा खिल गया, एकदम हंसने लगे, मुस्कुराने लगे, बोलते मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, अब ऐसा लग रहा है कि मुस्कान में आ गया। तो ऐसा होता है, हमारी सेवाएं जो है वो हमारी क्षमता से बहुत कम होती है तो संतुष्टि नहीं मिलती है, ऐसा लगता है आया राम गया राम है, बस आए और यहाँ से चले गए बस। देखिए जब तक आप सिर्फ खाते रहेंगे तो शरीर में शरीर की बनावट बिगड़ जाती है, संरचना बिगड़ जाती है। जब आप परिश्रम करते हैं तो आपको अच्छा लगता है, सुख की अनुभूति होती है ना, महसूस किया है आप लोग, आपने खुद महसूस किया होगा कि जब आप सिर्फ खा रहे हैं कई दिनों से और सो रहे हैं, खा रहे हैं सो रहे हैं, शरीर में ऐसा लगता है जकड़न है, लेकिन जब आप कुछ कीर्तन भजन करते हैं, कुछ पैदल चलते हैं, कुछ शारीरिक परिश्रम करते हैं तो नींद भी अच्छी आती है, उससे सुख का अनुभव होता है, या कभी कभी त्याग करने से भी अनुभव होता है सुख का अनुभव ना, जैसे उपवास रखते हैं दूसरे दिन अच्छा लगता है, द्वादशी के दिन हल्का महसूस होता है। तो वैसे ही जब तक आप सिर्फ खा रहे हैं स्कॉन में बैठ कर तब आनंद नहीं आएगा, अपना इनपुट देंगे, कुछ परिश्रम करेंगे तो आपको आनंद आना प्रारंभ हो जाएगा। ये प्रकृति का नियम है, आत्मा भोग कर ही नहीं सकती, जैसे ही भोग पर सीमित रहती है उसका आनंद खत्म हो जाता है। आत्मा का स्वभाव क्या है, सेवा करना, जीवित स्वरूप है कृष्ण नित्य दास। अगर वो सेवा करती है आत्मा तो अपने आप उसका अनुभव आनंद का अनुभव होता है ना। आपके प्रश्न में उत्तर है, बहुत ज़्यादा नहीं भी है और है भी, अंतर तो है। साधना का सीधा मतलब होता है अपने लिए, अभी जो हम साधना कर रहे हैं सिर्फ अपने लिए कर रहे हैं, और सेवा का तात्पर्य सीधा भगवान से होता है, अपने लिए कुछ नहीं होता, सबके लिए, मुख्य बात तो भगवान के लिए है, ठीक है। सेवा इसलिए मतलब बताया गया ना, सेवा अपनी मर्जी से चुना गया सेवा भी हो सकता है, उसमें अपना स्वार्थ हो, कभी कभी ऐसे भी होता है, जैसे मुझे ये अच्छा लगता है, ये सेवा अच्छी बात है पर ये सेवा का निर्धारण सही नहीं है, कि उसमें हो सकता है कि आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति कहा गया, स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मैं जब वृद्ध था, 70 वर्ष की आयु का था, तो वृंदावन में रह के भजन कर सकता था, वृंदावन में रह के भजन करना भी तो भगवान की भक्ति है, वहाँ से बैठ कर ग्रंथ लिख सकता था, लेकिन प्रभुपाद ने क्या किया, अपने गुरु के आज्ञा का पालन करने के लिए अमेरिका गए 70 साल की आयु में। बोलते हैं अगर वृंदावन में रहता मेरा स्पिरिचुअल सेंस ग्रेटिफिकेशन होता, मेरे आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति होती, क्योंकि मैं अपनी इच्छा से सेवा चुनता। जैसे कि आपका नौकर है, ठीक है, रामू, अब बोल रहा रामू मेरी गाड़ी निकालो, मतलब मैं नहीं निकाल रहा, मैं आपके कपड़े धो रहा हूँ, कपड़े आप ही धो रहे हैं, आप समझे, सेवा कर रहे हैं आप ही, लेकिन अपनी इच्छा से, इसलिए बोलते हैं आध्यात्मिक इंद्र तृप्ति। तो क्या आप उससे खुश रहोगे, आप उसे सेवा दे रहे हो ले नहीं रहा है, काम आपकी ही कर रहा है, सेवा आपकी कर रहा है, आपसे प्रसन्न नहीं होंगे। वैसे ही भगवान बोलते हैं, गुरु या अथॉरिटी के माध्यम से भगवान के निर्देशन के अनुसार अगर कोई सेवा करते हैं तो उस पर हम संतुष्टि मिलेगी, किसको मिलेगी, भगवान को, भगवान संतुष्ट होंगे तो आप संतुष्ट हो जाएंगे, नहीं तो उस नौकर को नौकरी से निकाला जा सकता है, सजाए देंगे, उसको सुविधा कम कर देंगे, अब अपने आप होगा, मालिक क्या बोलेगा, तुम अच्छे नहीं हो, तुम्हारी सैलरी कट जाएगी, कल से तुम ये काम नहीं करोगे, कल से तुम, उसको तकलीफ पड़ जाएगी, लेकिन जैसे ही वो मालिक के अनुसार कार्य करता है तो उसकी सैलरी बढ़ा देंगे, फैसिलिटी बढ़ा देते हैं, खुश रहता है मालिक, मालिक खुश है तो अपने आप फैसिलिटी बढ़ेगी। वैसे कृष्ण को संतुष्ट करेंगे आप अपने आप संतुष्ट हो जाएंगे। और अन्न मिलेगा और निंदा कर दान करेंगे तो निंदा मिलेगा। किसी से द्वेष करते हैं और द्वेष तो फैला रहे हैं इस समाज में, तो आपके प्रति द्वेष लोग करेंगे, इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन होता है, याद रखिए। जो व्यक्ति शिकायत करता है ना कि मुझे कोई प्रेम नहीं करता, क्योंकि उसने कभी किसी से प्रेम ही नहीं किया है ना, लव देंगे लव मिलेगा, प्रेम देंगे प्रेम मिलेगा, गारंटी है। नियम और प्रकृति 100% एकदम परफेक्ट नियम है। आप किसी सबसे प्रेम करके देखिए, आपको खुद अच्छा लगने लगेगा, आप से लोग प्रेम करने लगेंगे, आपको सब पसंद करेंगे, लेकिन आप सब में नुक्स निकालते हैं, सब में कमियां निकालते हैं, सबका द्वेष करते हैं, इसलिए आपको भी संतुष्टि नहीं है और आपके अंदर भी लोग कमियां निकालना शुरू कर देंगे। तो इसलिए जो आप देंगे वही मिलेगा वापस। दुनिया गोल है, भूगोल, जो आप देंगे वही वापस आता है, बहुत छोटी दुनिया, बहुत जल्दी वापस आता है। और एक बार बता दूं कि मेरा अनुभव है, मैंने सुना भी है कई लोगों से, आध्यात्मिक भक्ति जीवन में जब आ जाते हैं तो आपको रिएक्शन जल्दी मिलता है, याद रखना, आपने भी अनुभव किया होगा। अब यहाँ झूठ के बोले सीढ़ी फिसल जाएंगे, यहाँ किसी की निंदा की, घर जाते जाते आपके 100 करोड़ गिर जाएंगे, कुछ ना कुछ जल्दी नुकसान होता है। तो भगवान बोलते हैं भक्ति करें ना, जल्दी हिसाब किताब कर दो। ऐसे राशन की दुकान में खड़े हैं, कोई अपना आदमी कितना बोलते ना, अरे इसका पहले कर दो थोड़ा जरा, अपना आदमी है, बिल्कुल सही, उसको पता चल जाता है कि मैं गलत क्या हूँ। और कई साल के बाद मिलेगा तो समझ नहीं पाएगा किसका रिएक्शन है। अभी मान लीजिए 1 करोड़ जन्म के पहले वाला को रिएक्शन मिल रहा है, तो आप बोले पता नहीं किस जन्म का कब मिल रहा है, और अभी हिसाब किताब भारी हो जाए सब, है ना, तो समझा कि मैंने वो गड़बड़ किया था, तो फिर दोबारा गड़बड़ नहीं करेगा। ठीक है, और ठीक है, तो आज हम लोग दूसरा टॉपिक है जप, हरे कृष्ण मंत्र का जप के बारे में पढ़ते हैं। किसी मंत्र या स्तुति का धीरे धीरे मृदु वाणी से उच्चारण करना जप कहलाता है, और उसी मंत्र को जोर जोर से उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। उदाहरणार्थ महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे का मृदु स्वर में अपने सुनने के लिए उच्चारण करना जप कहलाता है। किंतु इसी मंत्र को अन्य लोगों द्वारा सुने जाने के लिए उच्च स्वर से उच्चारण करना कीर्तन कहलाता है। महामंत्र का प्रयोग जप तथा कीर्तन तथा कीर्तन के लिए दोनों के लिए हो सकता है। जब हम जप करते हैं तो वह जापक के निजी लाभ के लिए होता है, किंतु जब उसी कीर्तन को किया जाता है तो अन्य सुनने वालों को के लिए भी लाभ होता है। पद्म पुराण में इसका वर्णन आता है, जो व्यक्ति धीमे स्वर में या उच्च स्वर में पवित्र नाम का उच्चारण करता है उसके लिए मुक्ति तथा स्वर्गिक सुख के लिए मार्ग तुरंत खुल जाते हैं। यहाँ बता रहे जप, जप करने की जो विधि है वो कैसी है, धीरे मृदु, अपने लिए जप करना, मतलब अपने को सुनाना। कई बार होता है ऐसे, कई भक्त नए होते हैं भक्ति में आते हैं तो बोलते हैं जप करना चाहिए, तो वो बहुत जोर जोर से चिल्ला के करते हैं। एक फैमिली थी कटवारे सराय में, अभी नहीं वो ट्रांसफ़र हो गया उनका, वो बहुत ज़ोर से जप करते थे, मतलब रोज कंप्लेन आता था पड़ोसियों का, अरे कृष्णा चिल्ला चिल्ला करते थे, और उठते थे कब 3 बजे 3:30 बजे जब शुरू। आस पड़ोस वाले लगभग परेशान हो गए, मतलब लिटरली मतलब पुलिस कंप्लेन बचा था बस। तो उन्होंने सोचा क्यों ना इनके सेंटर में जाके इनसे बोला जाए, जो उनके पहचान के हैं, जो भी जानकार लोग हैं। तो मुझे भूलने आया कि बोलते हैं आप क्या ये व्यक्ति आते हैं, बोला हाँ हाँ, बोलते हैं कि आप लोग क्या सिखाते हो, तो जोर जोर से चिल्लाते हैं सुबह, मतलब लड़ाई झगड़ा करते हैं, बोले जब करते हैं, बोला जब तो हम कभी जोर से नहीं करते इतना जोर से, बोलते हैं चिल्लाते हैं जोर जोर से जब करते हैं, मतलब ठीक से बात करो उनसे। उन्होंने समझाया कि जब का मतलब होता है आपको सुनाई देते हैं, कीर्तन होता है जो हम लोग जीव जंतुओं को भी, भगवान के भक्तों को भी, आस पड़ोस के लोगों को सुनाते हैं, वो हमेशा नहीं कर सकते, उसकी भी समय अवधि होती है। तो जप को बताया गया है कि हरे कृष्ण मंत्र को 3 स्तर पर जपा जाता है। पहला स्तर को कहा जाता है वाचिक, वाचिक का मतलब इसमें कीर्तन को कहा गया, कीर्तन जोर जोर से हम कीर्तन करते हैं सड़क पर या कमरे में बैठकर, परिवार में या बेसमेंट में बैठकर, इसको बोलते हैं वाचिक। दूसरा होता है उपांशु, उपांशु जप को कहा जाता है विस्परिंग करना, जैसे हम लोग हरे कृष्ण मंत्र का जप करते हैं, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम, अपने लिए करते हैं या 2-4 लोग और सुन सके मैक्सिमम, शोर ना हो, चिल्लाए नहीं। फिर होता है अंतिम होता है मानसिक, मानसिक जप होता है। तो मानसिक जप जो होता है वो बहुत ही शक्तिशाली होता है, लेकिन अभी उसका प्रयोग हम लोग नहीं कर सकते क्योंकि हमारा मन पूरी तरह नियंत्रित नहीं है। हरिदास ठाकुर जो करते थे 192 राउंड्स करते थे, वो ऐसे ही करते थे, 64 माला वाचिक जोर जोर से चिल्ला कर एक गुफा में बैठ जाते थे। आस पड़ोस कोई नहीं होता था, जोर से हरे कृष्णा 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 हरे हरे ऐसे करते थे, और 64 करते थे उपांशु हरे कृष्ण 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 हरे राम हरे राम ऐसे करते थे, और 64 करते थे मान से चुप हो गए बिल्कुल शांत मन से जपते थे। मन से जपने वाला व्यक्ति बहुत ऊँचा स्तर होता है, धीमे उपांशु विस्परिंग, और मानसिक जो है वो जपता व्यक्ति मन से, उसमें आप शब्द नहीं निकलते हैं, मन में जप करता है, वो सबसे पावरफुल होता है। लेकिन सबसे पावरफुल कब होगा, जब आपका मन नियंत्रित होगा। मन नियंत्रित नहीं है तो नहीं हो सकता, इसलिए प्रारंभिक अवस्था में उपांशु जप करने के लिए कहा जाता है या वाचिक जप करने के लिए कहा जाता है, इसे ज़्यादा नहीं। जब हरिदास ठाकुर जैसे स्थिति पर पहुँचेंगे तब आप मानसिक जप कर सकते हैं, मन में जप करना बहुत कठिन है। इसलिए यहाँ तक कि ब्राह्मण दीक्षित भक्तों को बताया जाता है कि उनको मानसिक गायत्री नहीं करना चाहिए, उपांशु करना चाहिए। फिर उपांशु भी कैसा है कि दूसरे को सुनाई ना दे, क्योंकि गायत्री मंत्र को रिवील नहीं किया जाता है। गुरु का मंत्र और गायत्री मंत्र उसको गुप्त रखा जाता है, वो दूसरे को बताया नहीं जाता है। गुरु का मंत्र अगर जोर से जपते हैं या गुरु के मंत्र को दूसरे को बताते हैं तो उसका फल प्राप्त नहीं होता है। गायत्री मंत्र को अगर जोर से बोलते हैं या दूसरों को बता देते हैं तो उसका फल चला जाता है, दोबारा आपको दीक्षा लेनी पड़ेगी मंत्र की। इसलिए जो गायत्री जपते हैं लोग उसमें देखना ध्यान से बैठे थे, कई लोग आँख बंद करके मन में जपते गायत्री, तो वो लोग अच्छा नहीं कर रहे हैं। प्रभुपाद जी कई जगह से बोले हैं, प्रभुपाद जी करते भी थे, आप उनके वीडियोज़ देख सकते हो, जो गायत्री करते थे विस्परिंग करते थे, उठ लेंगे बस और आवाज़ कुछ नहीं है, क्योंकि बोलना नहीं है, आवाज़ सुनाई नहीं देना चाहिए, लेकिन बोलना भी ज़रूरी है। जब शब्द को बोलते हैं मतलब ओट हिलाते हैं शब्द के साथ, तो आपका मन नहीं भटकता है, आप कभी करके देखिएगा। लेकिन जब आप ऐसी बैठ के हरे कृष्ण मंत्र जपेंगे या कुछ भी जपेंगे तो मन बहुत जल्दी भटक जाता है। जब जोर से बोलते हैं तब भटक जाता है, तो मन मानसिक करें तो नहीं भटकेगा, बहुत सिंपल सी बात। तो जब के लिए इसे बताया गया है, और जब यहाँ प्रभुपाद जी बोल रहे हैं जब किसके लिए करते हैं, हम अपने लिए करते हैं, कीर्तन हम सबके लिए करते हैं, भगवान की प्रसन्नता के लिए करते हैं, ठीक है। तो जब जो होता है वो यहाँ बताया जा रहा है कि खुद को सुनाने के लिए किया जाता है ताकि हम शुद्ध हो जाएं। तो जब के बारे में ये भी बोला जाता है कि कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हम जब करें तो हमारा तो लाभ हो गई होगा, हम दूसरे का लाभ के लिए जोर से जपें, है ना, ऐसा कई लोग बोलते हैं। बोलते नहीं, अगर आप चाहते उसका लाभ हो तो उसको जप करना सिखा दीजिए, ये ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं कि चिल्लाना। और कीर्तन तो हम दिन भर नहीं कर सकते, या 2 घंटा नहीं करते हैं, छोटा 5 मिनट 10 मिनट कीर्तन करते हैं। ऐसे यहाँ भी टोटल जो हमारा टाइम होता है कीर्तन का, अगर ध्यान से देखें तो हार्डली 20-25 मिनट का होगा, बाकी समय हो गया तो कुछ पढ़ते हैं या तो कुछ प्रणाम करते हैं, ये सब आदि करते हैं, है ना। तो कीर्तन का ज़्यादा देर बड़ा कीर्तन करेंगे तो सोसाइटी में प्रॉब्लम होता है। लेकिन अगर आप ऐसे अवस्था में हैं कि बहुत सारे लोग हैं, जैसे आप 10,000 लोग कीर्तन कर रहे हैं, तो आप 10 घंटा भी कर सकते हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा, 10,000 मेजॉरिटी है, तो ये आपको कुछ बोले नहीं आएगा व्यक्ति कि आप क्यों कीर्तन करें। और जब भी जो करते हैं उसके भी 3 स्तर होते हैं, मैंने बताया अभी, उसी के साथ 3 स्तर होते हैं, रजोगुण तमोगुण सत्वगुण में भी करते हैं और दिव्य गुण में भी करते हैं। तमोगुण का जब क्या होता है, जब हरे कृष्ण मंत्र तमोगुण का नहीं है, ध्यान दीजिए, हम तमोगुण में रहकर जप करते हैं। जैसे कई लोग हरे कृष्ण मंत्र जप रहे हैं पर क्यों जप रहे हैं उन्हें पता नहीं, कई लोग ऐसे कर रहे हैं, कोई उद्देश्य नहीं है, ऐसे ही जप रहे हैं। क्यों जपते हरे कृष्ण, सब जप रहे हैं, इसलिए जप रहे हैं, सब करते हैं जी, है ना। और दूसरा होता है किसी फल की आसक्ति से, कि मुझे सुख संपत्ति खराब है, कष्ट मिटे तनखा, ओम जय जगदीश हरे, हरे कृष्णा भगवान, टीवी नहीं हमारे, हरे कृष्णा बच्चे की शादी करा दो, हरे कृष्णा तबियत ठीक करा दो, हरे कृष्णा पास करा दो, हरे कृष्णा मन में चलता रहता है, डिजायर्स रहते हैं, लिस्ट रहता है सामने में, हरे कृष्ण मंत्र के बजाय लिस्ट टांग के चैंटिंग करते हैं। ऐसे लोग क्या है, रजोगुण में रह के भक्ति कर रहे हैं। सतोगुण वाला व्यक्ति क्या करता है? सतोगुण वाला व्यक्ति जप करता है सिर्फ अपने शुद्धिकरण के लिए, क्या मैं शुद्ध हो जाऊंगा, हरे कृष्ण मंत्र जपूंगा तो शुद्ध हो जाऊंगा, हम मंगल आरती क्यों आते हैं, शुद्ध हो जाएंगे, भगवान के दर्शन क्यों करते हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे, है ना, प्रसाद को ग्रहण करते हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे। वेर इज कृष्णा, वेर इज सेटिस्फेक्शन ऑफ कृष्णा, भगवान की संतुष्टि कहाँ है इस पूरे भक्ति में, है ना। सोच के देखिए, हम कीर्तन क्यों करते हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे, हम मंगल आरती क्यों आते हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे, स्नान क्यों करते हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे, तिलक क्यों लगाते हैं, हम शुद्ध हो जाएंगे, इस शरीर पवित्र हो जाएगा, तो भगवान की संतुष्टि के लिए तो कुछ भी नहीं हो रहा है। तो भगवान की संतुष्टि के लिए जब हम भक्ति प्रारंभ करते हैं कि कृष्ण ये जो अगला मंत्र में बोलने जा रहा हूँ ये आपके लिए, आपकी संतुष्टि के लिए, कृष्ण मैं ये जो गाने जा रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, कृष्ण मैं नृत्य कर रहा हूँ आपकी संतुष्टि के लिए, जब ये फीलिंग आएगी आपके अंदर नेचुरल, अभी तो फोर्सफुली करना पड़ेगा, प्लान करके आना पड़ेगा, लेकिन जब नेचुरल होगा तब समझ लीजिए आप दिव्य भक्ति कर रहे हैं। ट्रांसेंडेंटल डिवोशन बोला गया उसको, अभी गुणों के अंदर रह कर रहे हैं, बाद में हम तीनों गुणों से परे होकर कर पाएंगे। तो अभी हमारी ऐसी स्थिति है, हर चीज़ में हम लोग अपनी स्वार्थ है हमारा, कुछ ना कुछ है ना, कुछ ना कुछ स्वार्थ है हमारा, भी हम सोचते हैं हम अच्छे बन जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे, हम अच्छे हो जाएंगे। जैसे कि बात है ना कि भगवान ने एक लीला की थी, जो सिर में दर्द हुआ भगवान को, हमने कथा सुनी होगी, उसमें नारद मुनि पूछते हैं क्या हुआ भगवान आपके सिर में दर्द, आपके सिर में दर्द कैसे हो सकता है, बोलते हैं कि सिर में दर्द क्या करें, तो बोलते हैं कि अच्छा ये बताइए इलाज कैसे होगा, बोले इसका इलाज होगा किसी शुद्ध भक्त के चरण के रज ले आइए, धूल ले आइए। तो बोलते हैं बस ये तो बड़ा आसान है, बोलते हैं आप नहीं दे दो, बोलते नहीं भवन मैम अपने चरण का रज आपके सिर में लगा, कमाल की बात करते हैं, नहीं ऐसे नहीं मैं लेकर आऊँगा, चिंता मत कीजिए। तो जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, ब्रह्मा जी से बोलते हैं कि भगवान के सिर में दर्द है, कुछ धूल दे दीजिए अपने चरणों की। बोले देखो बेटा उसने छोड़ दे रहा हूँ, ऐसा बात बोला मत करो, मैं अपने चरणों की धूल ही भगवान के बाद, हम सोच सकते हैं बताइए भी, हम सब सोच सकते हैं कि भगवान के फोटो लगाएं, कथा सुन के सोच सकते हैं जोश आ जाए, लेकिन अंदर से डरे रहते हैं हम लोग, है ना। वैसे शिव जी के पास जाते शिव जी मना कर देते हैं, तो भगवान वापसाई कई भक्तों के पास जाते हैं तो मना कर देते हैं, तो भगवान के वापस आते हैं बोलते हैं कि मिला धूल, बोले नहीं मिला तो नहीं धूल, बोले फिर क्या करें भगवान समझ नहीं आ रहा, मैं तो सोचा बड़ा आसानी से मिल रहा है बस सिर दर्द ठीक हो जाएगा, तो बोलते हैं कि ऐसा करो वृंदावन जाओ गोपियों से मांगो। बोले गोपियाँ भी गाँव जी, बोले हाँ हाँ उनसे जाओ, बोले उनकी बुद्धि इतनी तेज नहीं है, बोले नहीं जाओ उसे मांग दो देखो। बोलते हैं कृष्ण के सिर में दर्द है आप धूल दे दीजिए, तो बोलते कितना किलो चाहिए बताइए, कितना चाहिए मात्रा बताइए। बोलते आपको भय नहीं है कि आप भगवान के सिर पर अपने चरण धूल लगाएंगे तो भगवान को तो चलो आनंद आ जाएगा, भगवान का सिर दर्द ठीक हो जाएगा, आप लोग नरक चल जाओगे। बोले हमें कोई दिक्कत नहीं है, हमारे स्वामी जी प्रसन्न हो जाए हमें नरक चलने में कोई दिक्कत नहीं, ये है संतुष्टि। लेकिन अभी क्या है हम लोग, क्या हम कैसे भी बचे रहे, कोई नरक चल रहा है कोई दिक्कत नहीं है, है ना, हम बच जाए कैसे, हम स्वार्थी हैं, इसलिए दिव्य भक्ति नहीं है, ये मोड्स के अंदर ज़्यादा सतोगुण तक हो सकता है ना, इसमें बहुत ऑनेस्ट होना पड़े। इसलिए भक्ति ना जो ईमानदारी वाली बात है, भक्ति दिखावा नहीं है, याद रखिए। आप कितना भी बहुत बढ़िया व्यासासन बैठ जाइए, प्रवचन दे दीजिए, सिर मुड़वा लीजिए, लेकिन आप अंदर से ऑनेस्ट नहीं है ना, तो भक्ति कर ही नहीं रहे, है ही नहीं भक्ति, कितना भी बाहर से दिखता हो, ये अच्छा गाना, अच्छा बोलना, अच्छा कुकिंग कर लेना, अच्छा ड्रेसिंग कर लेना भगवान का, अच्छा मैनेजमेंट कर लेना, ये भक्ति नहीं है एक्चुअली। ये भक्ति में सहायक हो सकते हैं आपको एंगेज रहने में, भक्ति का वास्तव मतलब है कि जब आप कर रहे हैं तो भगवान की संतुष्टि के लिए प्रयास कर रहे हैं। लोग सोच रहे हैं कि लोग भक्त बन जाए, ऐसा अगर थिंकिंग है तब भक्ति है। मैं बार बार यही बात बोलता हूँ, ये सारा जो चक्कर है ना चेतना का है, आप क्या कर रहे हैं, क्या सोच है आपकी, जब आप कोई कार्य करते हो सोच क्या है, एब्जॉर्प्शन का, जब बोले कि भगवान की भक्ति में लीन है, लीन होगा तो बाहर की चीज़ों पर उसका ध्यान ही नहीं होगा, है ना, क्या खा रहा है, क्या पहन रहा है, किसको देख रहा है, कहाँ देख रहा है, कहाँ लेटा, उसको होश नहीं होता, लीन का मतलब ही होता है। अभी हमारी स्थिति कहीं और है, हम बाहर की दुनिया में लीन है, सामने में खड़े हैं भगवान, सामने में खड़े उसको देख भी रहे हैं भगवान, फिर भी भगवान नहीं दिख रहे हैं। ऐसा कभी होता ना, किसी वस्तु को हम देखते हैं और कुछ सोचते रहते हैं, वस्तु दिखती नहीं है, महसूस क्या है, ऐसे होता है कभी भगवान के ऑल्टर के सामने आते हैं और भगवान को देख रहे हैं पर दिख नहीं रहे भगवान। ध्यान हो रहा है कि लोग मुझे देख रहे हैं कि मैं कितना गंभीरतापूर्वक भगवान को देख रहा हूँ, पूरा ध्यान वैसे ही होता है। इसको बोलते हैं डुप्लिसिटी, हालांकि चीटिंग प्रोपेंसिटी है, धोखा देने की प्रवृत्ति। लेकिन आप सोचते हैं भगवान, मैं उसी समय अगर ये सोच लें भगवान कितना बुरा हूं मैं, आप खड़े हैं सामने में फिर भी मैं लोगों के बारे में सोच रहा हूं, है ना, लोग क्या कहेंगे, हमारे समस्या बहुत बड़ा समस्या है कि लोग क्या सोचेंगे। भगवान बोलते हैं कभी तो सोचो कि मैं क्या सोचूंगा, कभी सोचते हैं कृष्ण क्या सोचेंगे, सड़क पर कंठी में कंठी माला धारण कर कर बीट बैग टांग कर तिलक लगा कर धोती कुर्ता पहनेंगे तो यंग लोग क्या सोचते पता, अरे वो गली में जो लड़की रहती है वो क्या सोचेगी, और तो पुजारी है पंडित जी है, तो लोग जींस पहन के आते हैं, पैंट शर्ट पहन के आते हैं, धोती पहनने में शर्म आती है। या हम लोग कहीं ऑफिस जाते हैं तो सामने में बीट बैग टांगना तिलक लगाने में शर्म आती है, या ये बोलना कि मैं भक्त हूँ ये बोलने में शर्म आती है, क्यों, लोग क्या सोचेंगे। नहीं, मनोहर बाबू जी बताते हैं वो जब बस से आते थे जर्नी करके तो बस में खूब कीर्तन करते थे, तो कोई एक व्यक्ति बोले लगा कि तो जोर जोर से कीर्तन क्यों करते हो, ये अच्छा आपको शर्म ही आती, तो बोले आप लोग यहाँ लिखा नो स्मोकिंग फिर भी स्मोक करते हो, शर्म नहीं आती, उनको शर्म नहीं आई, हमें शर्म आ जाती है अच्छा करने में। लोग आज देखिए क्या है, स्त्री पुरुष ऐसे मिलते हैं, ऐसे घुलते मिलते हैं घूमते हैं, ये शर्म वाली बात है। हम छोटे थे कभी नहीं देखे स्त्री पुरुष एक दूसरे का हाथ पकड़े हो, पति पत्नी वो भी हाथ नहीं पकड़ते थे, दूर दूर चलते थे, सिर झुका के चलते थे। आज पति पत्नी है या नहीं पता नहीं, बने भी नहीं, बनेंगे कि नहीं बनेंगे फ्यूचर में भी, उन लोग हाथ में गले में डालना चुम्बन आदि करते हैं, मतलब इतना घटिया हो चुका है, उनको शर्म नहीं है। लेकिन हमें बीट बैग में हाथ डालने में, गले में टांगने में, तिलक लगाने में इतना शर्म आती है, जबकि सबसे संसार का महान कार्य है, सबसे निकृष्ट कार्य जो कर रहे हैं उनको शर्म नहीं है, बेशर्म हो गए हैं। अभी हम लोग सत्य निकेतन में वहाँ पिचिंग करने के लिए ढूंढ ढूंढ रहे हैं, तो पार्क के पीछे ही एक डिवोटी का घर है, तो उन्होंने बोला प्रोजे आप हमारे यहाँ कर लीजिए प्रोग्राम, तो मैं बोला कि आपका कमरा बहुत छोटा है, बहुत छोटा कमरा, तो मतलब यह मुश्किल है, इतने लोग बैठ नहीं पाएंगे, चाहिए बड़ा कमरा। तो ये जो पिता थे वो बताने लगे कि हमें तो बहुत शर्म आती है यहाँ पार्क में क्या क्या होता है, हम अपने दरवाजे खिड़कियाँ बंद कर देते हैं, कितना शर्म आता है, हम ये फ्लैट चेंज करना चाहते हैं लेकिन आप लोग आ जाओ तो भजन कीर्तन हो तो रुक जाएंगे हम, तो हमें भक्ति करने में शर्म आती, सोचिए किसी को बताने में भी शर्म आता है, ऑफिस में बताओ बहुत मुश्किल होता है, क्यों नहीं खाते जी आप, ऐसे ही बस नहीं खाते हैं, मन नहीं है, पार्टी में चलो मूवी देखने चलो नहीं, मन नहीं है। डंके की छोटे बोलते हैं कि हम भक्त हैं, हम ये करते नहीं हैं, सब गलत मानते हैं, पाप है, तो बोले आउटडेटेड पर्सन यू फेलियर, पिछड़े हुए लोग, लोग ऐसे बोल देंगे आपको, आपको लगता है मुझे पिछड़े बोल देंगे तो मैं पिछड़ जाऊँगा, नहीं पिछड़े हुए लोग हुए हैं, पाश्चात्य जगत तारिणे, प्रभुपा जी का प्रणाम मंत्र लिखा रहता है ना, क्या पाश्चात्य जब पाश्चात्य मतलब पिछड़ा हुआ जगत को, पाश्चात्य जगत मतलब पश्चिम नहीं, पिछड़े हुए जगत को, तो इंडिया भी आ गया उसी में, इसलिए इंडिया में प्रीचिंग करा प्रभुपा जी ने, तो बोलेगा पाश्चात्य जगत तारिणे तो भारत का फिर प्रभुपा जी ने उद्धार नहीं किया, किया क्योंकि ये भी पिछड़ा हुआ है, पिछड़ा हुआ मतलब आप चेतना में पिछड़े हैं गिरे हुए। जैसे कि SMS आया था तो जी ये लीजिए आपकी सोच गिरी हुई दिख रही, उठा कर लाया हूँ, समझे मतलब आपकी सोच गिरी हुई थी तो उठा कर वापस दे रहा हूँ, हमारी सोच कैसी है, गिरी हुई है ना, अच्छी है, अच्छी नहीं है, तो गिरी हुई मतलब कहीं छोड़ दिया आपने उसको, वास्तविक चेतना जो आप उसको अपने त्याग दिया है उसको छोड़ दिया है, तो वापस ला के दे रहे प्रभु जी आपकी चेतना है, या आपकी सोच गिर गई थी वापस रख लीजिए, ऊंची हो जाएगी, गिरी भी नहीं रही, तो हम लोग सोचते हैं कि कौन जॉब करना, ये मतलब सबसे संसार का घटिया काम से छुपा कर करो। सबसे ज़्यादा जब लोग छुपे करते हैं, ट्रेन में अगर बैठे हैं तो सब हमको देखते रहते हैं, हम लगते हैं हमको देख रहे हैं, बंद कर देते हैं उसको, निकाल के बैग में रख देते हैं, जेब में रखे रहते हैं, कई लोग जेब में रहते हैं, यहाँ पे कई लोग आते हैं जेब में रखे, रास्ते में कुछ देख ना लें, नहीं गले में टांगिए और सीना चौड़ा करके, अच्छा काम कर रहे हैं आप, गलत काम नहीं कर रहे, गर्व होना चाहिए ऐसे कर, है ना। और कोई भी आपको बोलता है राम राम तो हरे कृष्ण बोलना चाहिए डंके के चोट पे, मतलब ऐसे क्योंकि गलत काम करने थोड़ी जा रहे हैं आप, घटिया काम नहीं कर रहे सोसाइटी में, आप संसार का बेस्ट काम कर रहे हैं, बेस्ट, इससे बेस्ट हो ही नहीं सकता, उसमें क्या शर्माना, लोगों को और दीजिए बांटिए। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, इतना शर्माए, इतने चुपचाप है, घबराए हुए हैं, जैसे कि चोर होता है वैसे, है ना। तो ये अच्छा चेतना नहीं है, इसलिए यहाँ बताया जा रहा है कि कीर्तन जो है इसलिए जल्दी काम करता है दूसरे के जीवन में, जैसे संकीर्तन निकालना, संकीर्तन में बताया गया है प्रचार करना, ग्रंथों को वितरण करना, हरिनाम संकीर्तन लेना, सब संकीर्तन है। गिरत बांटने में शर्म आता है, है ना, और रोज आप कितनी बड़ी दुकान है, आप इतने पढ़े लिखे हो, सड़क पर क्या कर रहे हो। हम जब हुंडई में जॉब करते थे तो महिपालपुर जाते थे डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बुक्स, तो कभी कभी ऑफिस से डायरेक्ट पहुंच जाते थे, तो वो पढ़ नहीं पाते थे, यहाँ हुंडई लिखा रहता था, हुंडई मोटर्स लिखा रहता था, तो वो लोगों को पता नहीं चलता था क्या लिखा है। कई लोग आते थे बोलते आप सेल्स मैन हैं, बोला हम सेल्स मैन नहीं हैं, हम डिस्ट्रीब्यूशन कर रहे हैं। तो हम बता देते उनको कि हम लोग मैं हुंडई में काम करता हूँ, डिप्टी मैनेजर हूँ, ये कार्ड मेरा है। तो एक ही व्यक्ति दो दो किताबें ले जाता था और साथ साथ में कार्ड ले जाता था, बोलते हमारे बेटे का जॉब लगा देना। तो लोग जब देखेंगे कि आप इतने महान हैं और ये काम कर रहे हैं, तो काम जो कर रहे हैं ना वो ऊंचा हो जाएगा, उसकी वैल्यू बढ़ जाएगी। आप सोचिए कि ऐसे प्राइम मिनिस्टर मोदी ने जब बुक दिया तो लोग कितने फेमस हो गए, कि भगवद गीता पर कितने लोग सोचने लगे, अच्छा काम भगवत देना, अच्छा भगवद गीता देना अच्छा काम मानने लगे, है ना। तो यही है, इसलिए शर्माई मत, बुक डिस्ट्रीब्यूशन है, हरे नाम संकीर्तन निकालना, प्रभात फेरे निकालना और प्रचार करके लोगों को भक्त बनाना, ये बहुत संसार का सबसे उत्कृष्ट काम है, इसे शर्माई मत। ठीक है, इसके बाद जो है आत्मनिवेदनम है, ये अभी चर्चा नहीं करेंगे, बहुत बड़ा टॉपिक है, थोड़ा सा पुरुषोत्तम मास के बारे में चर्चा करते हैं। वैसे वहाँ पर भांडर बने क्लास अटेंड की हमको पता ही है ना, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ, मेरे बैग से ना एक नोट्स होगा फ्रंट वाले से, फ्रंट फ्रंट। पुरुषोत्तम मास जो है अभी आज प्रारंभ हो गया है, 16 तारीख तक रहेगा, 16 जुलाई तक। तो ये महीना जो है बड़ा ही पवित्र बताया गया है शास्त्रों के अनुसार। वैसे तो कर्म कांडी अभी भी इसको मल मास नाम से जानते हैं, अभी भी बोलते हैं मल मास, क्योंकि उनकी बुद्धि वैसी है मल के समान, तो हर चीज़ मल ही दिखता है उनको, है ना। लेकिन उपासना कांड के अनुसार ग्रंथों में जो दिया है, वेदों में 3 भाग हैं, ज्ञान कांड, कर्म कांड और उपासना कांड। उपासना कांड के अनुसार तो कर्म कांड में तो ये सब आते हैं जो रिचुअल्स होते हैं, ये दान करो, वो करो, ऐसा करो, यज्ञ करो। ज्ञान कांड में भगवान को भगवान का ज्ञान के मार्ग से समझना चाहते हैं, पर उपासना कांड में भक्ति होती है। तो उपासना कांड में बताया गया है कि पुरुषोत्तम मास के नाम से जाना जाता है, तो उसमें जब कृष्ण युधिष्ठिर से मिलने जाते हैं, युद्ध होने के पहले की बात है, जब 13 वर्ष के वनवास पूरा हो चुका है पांडवों का, उसके बाद जब मिलने जाते हैं उनसे, तो उनको बोलते हैं कृष्ण हमने इतना कष्ट क्यों सहन कर रहे हैं, इतना कष्ट हमारे जीवन में किया, हमने तो कोई कष्ट कुछ किया नहीं है। तो बोलते हैं कि आपके जीवन में किसी ने पुरुषोत्तम मास का पालन नहीं किया है। तो बताते हैं कैसे, उसको बताते हैं कि एक बार नारद मुनि जाते हैं नरनारायण ऋषि से पूछने के लिए पुरुषोत्तम मास के बारे में। तब नरनारायण ऋषि बताते हैं पुरुषोत्तम मास क्या है। तो बोलते हैं एक बार जब ये 3 साल में जब एक महीना बचता है, कुछ दिन बच बच के एक महीना बनते हैं, तो ये मल मांस के नाम से जाना जाता है, बचाव भाग, जैसे हम झाड़ू लगाते हैं कुछ बच जाता है तो उसको बचा हुआ या खर वस्तु बची बची हुई चीज को माना जाता, उच्चिष्ट माना जाता है। तो ये महीने का बचाव भाग को, 12 महीने बचाव भाग को मल मांस के नाम से जाना जाता था। तो इसको सब निकृष्ट दृष्टि से देखते थे कि सड़ी हुई चीज़ें, बेकार चीज़ें। तो हर महीने का एक कोई ना कोई देवता होता है और कोई ना कोई व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व है तो वो स्त्री जो है वो निकृष्ट माना जाता है, कोई उसको अपनाता नहीं था। तो विष्णु की प्रार्थना करती, विष्णु बोलते हैं कि मैं तुम्हें कृष्ण के पास ले जाता हूँ, कृष्ण के पास ले जाते हैं विष्णु। तो कृष्ण बोलते हैं कि तुम्हारा कोई पति नहीं है, आज से मैं तुम्हारा पति हूँ, उससे पति बन जाते हैं। और तुम्हारा नाम आज से रहेगा पुरुषोत्तम मास, और क्योंकि मैं तुम्हारा पति हूँ, तुम्हारी कोई निंदा करेगा तो नरक जाएगा, भगवान से बोलते हैं। यानी पुरुषोत्तम मास की निंदा नहीं होनी चाहिए, कहने का मतलब। और बोलते हैं इस महीने में किए गए जाने वाले जितने भी व्रत हैं, जितने भी आध्यात्मिक कार्य हैं, वो स्टेबल हो जाएंगे, मतलब पूरी तरह फर्म हो जाएंगे, और क्या होगा वो वृद्धि भी करेंगे आपके भक्ति में। तो इस महीने में किए जाने वाले दो पुरुषोत्तम मास में जो भी नियम पालन करते हैं उससे बताते हैं कार्तिक महीने से भी 100 गुना ज़्यादा फायदा होता है। और ये पुरुषोत्तम मास अभी प्रारंभ हुआ है, ये बहुत ही वर्षों के बाद हुआ है। बताते हैं जब दो आषाढ़ मास एक साथ आते हैं तब जगन्नाथ जी का नव कलेवर होता है। तो ये 14 साल में जब जनरली होता है, इस बार 19 साल के बाद आया ये पुरुषोत्तम मास। तो ज़्यादा ही लाभकारी है, ज़्यादा ही हमारे जीवन को भक्ति बढ़ाने वाला है। तो इसमें बहुत कठोरता जैसा पालन करना चाहिए, है ना। और इसमें कई नियम हैं, अगर आप छोटे छोटे नियम मैंने बताए थे कुछ नियम, आप उस पर चाहो तो लिख लो और कुछ निर्णय ले सकते हैं। आज ही से प्रारंभ कीजिए, अभी समय बीता नहीं है। तो छोटे छोटे नियम मैं बताता हूँ आपको, प्रारंभ कीजिए। पहला काम है ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कितना 11:30 बजे सुबह। कितना बजे ब्रह्म मुहूर्त होता है? 4:10 से 4:58 तक, 48 मिनट तक मुहूर्त होता है। तब ब्रह्म मुहूर्त में उठना है, मतलब जगे हुए रहना सुबह। अब ऐसे नहीं अलार्म लगा कर जग जाते हैं, कई लोग जगे रहते हैं जैसे ब्रह्म मुहूर्त खत्म सो जाते हैं, फिर ये नहीं। जगना है मतलब उसमें आध्यात्मिक कार्य करना है, मंगल आरती कीजिए, गाइए, घर में सेवा कीजिए, भगवान को भोग लगाइए, माले भोग मीठा मीठा। दूसरा काम है सच बोलना, पूरे महीने सच बोलना चाहिए। बहुत कठिन है मैं जानता हूँ, मैं आप लोगों का कष्ट समझ सकता हूँ, लेकिन प्रयास कीजिएगा सच बोलना, सिर्फ सच बोलना, सच के अलावा कुछ नहीं। दूसरों की निंदा नहीं करना, ये और ही कठिन काम है ना। जैसे मैं देख रहा था एक वीडियो था, उसमें दो स्त्रियाँ बैठी हुई थी और जैसी 1:30 बज गया, 1:30 बज गया चुगली का टाइम, सब जल्दी करते हैं, चुगली करेंगे दूसरे की। तो कई लोगों को चुगली करने का बड़ा आनंद आता है, बोले आज कुछ अजीब अजीब से लग रहा है, कुछ हुआ नहीं है, बोले हाँ चुगली नहीं किसी ने आज, तो चुगली करते हैं, चलो निंदा करें किसी की तो मज़ा आएगा। हमारा नेचर है, ह्यूमन बींग का नेचर है निंदा करना। तो एक महीना थोड़ा तपस्या करना पड़ेगा आपको, एक महीने के बाद एक ही दिन पूरा कर लेना, फिर कम से एक दिन आप रुक जाइए।
जो गलत काम कर रहे हैं उनकी भी
जरूरत ही क्या है, ना आप कानून है, ना अथॉरिटी है, ना आध्यात्मिक गुरु है, उसमें बात ही क्या करना। एक चोर चोरी करता हुआ पकड़ा गया, ठीक है, पुलिस ले जा रही है, चोर चोरी करके पकड़ा गया, सजा होगी, आपका क्या रोल उसमें? देखिए आप उतना देर बोलेंगे अरे इसने चोरी की थी, बहुत खतरनाक है, पकड़ा गया, उसकी 3 साल की सजा होगी, ये होगी, व्हाट इज द यूज, इससे प्रचल पा। और आज की गवर्नमेंट के बारे में बाद में पता चलेगा चोर था ही नहीं, तो निंदा हो गया नहीं। तो हमें चोर को चोर भी नहीं बोलना चाहिए, जरूरत क्या है, मुझे क्वेश्चन ये है, जब तक आप इन्वॉल्व नहीं किसी चीज में, उसमें इन्वॉल्व होने की जरूरत से जरूरत क्या है। इतना ही शौक है तो जाइए पुलिस थाने में, जब इतने सारे चोर सबके बारे में खूब चर्चा की, ये क्या किया इसने, चोरी की, इसने मर्डर किया, सब बात करते रहिए। तो हम तो ऐसे जगह से दूर भागते हैं ना, बताते हैं भक्त जो है व्यर्थ के वाद विवाद में, व्यर्थ के केसेस में फंसता नहीं है, अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि इससे क्या मानसिक चेतना दूषित हो जाती है, अब भजन में रुचि नहीं रहती। आपने चोर को देखा और चोर के बारे में बोल दिया, श्रवण और कीर्तन कर लिया, आप कहीं ना कहीं स्मरण होगा, अकेले बैठेंगे चोर हाँ चोरी किया तो वही था, चोर सब चाहते हैं वही सब चीजें घूमने लगे उनके सामने, तो इसलिए अवॉइड करना चाहिए। भक्ति ठाकुर बोलते हैं इसलिए वैष्णव को ये भी बोला जाता है कि ये भी एक कैटेगरी है चोर निंदा करना। जब तक आप अथॉरिटी नहीं है, गुरु नहीं है, तब तक आपको कोई अधिकार नहीं है जब भक्त और अभक्त को किसी को घोषित करें, स्थापित करें। गुरु का काम है, गुरु का काम ही है शिष्य के अंदर कमी ढूंढना, तब तक सुधारेंगे। कोई तो होना चाहिए हमारे अंदर कमी ढूंढे, लेकिन आपस बने गुरु का काम। इसके बाद है ग्रंथों का अध्ययन करना, ग्रंथों का अध्ययन करना। कई ग्रंथों में कई चीजें हैं अध्ययन करने के लिए, जैसे गजेंद्र मोक्ष, वृत्तासुर की कथा है ना, और ध्रुव चरित्र, प्रहलाद चरित्र, ये प्रसंगों को पढ़ना चाहिए। चार प्रसंग काफी हैं, बहुत बड़े बड़े हैं, आप पढ़ सकते हैं। और इन सब लेक्चर्स को भी सुन सकते हैं, इनके संबंधित जो प्रवचन हैं, कई महाराज के प्रवचन इसमें मिलेंगे, वो पढ़िए। श्रीमद्भागवतम.com उसमें सारे लेक्चर्स दिए हुए हैं, उसमें जाइए, उस कैंटो का श्लोक नंबर ढूंढिए, श्लोक वाइज दिए हैं, उसको क्लिक कीजिए, सुनिए, ठीक है। उसके बाद है कृष्णा बुक, सीसी श्रीमद्भागवतम प्रतिदिन पढ़ना। राधा कृष्ण की पूजा करना, राधा कृष्ण की पूजा करना। पूजा में पुष्प चढ़ाना चाहिए, गुलाब का, कमल का फूल चढ़ाना चाहिए, रोज पूजा करनी चाहिए। बताया जाता है कि कोई 1,00,000 तुलसी के पत्ते का अगर दान करता है, 1,00,000 तुलसी के पत्र का दान करता है एक दिन में, राधा कृष्ण को इसी जन्म में गोलोक धाम जा सकता है। ट्राई करके देखिए, ठीक है। आगे कीर्तन गाना, कीर्तन में जय राधा माधव भजन गाना, कई भजन है, जय राधा माधव है, राधा कृपा कटाक्ष है, नंद नंदन अष्टकम है, उसके बाद है जय राधा मदन मोहन भजन है, राधा कृष्ण बोल बोलो रे सुभाई, ये सब भजन गाते हैं। वृंदावन रम्य स्थान, दिव्य चिंतामणि, सब आप गा सकते हो भजन, ठीक है। उसके बाद है घी का दीपक भगवान को ऑफर करना। मान लीजिए किसी कारणवश से घी का दीपक आप रात को ऑफर नहीं कर पा रहे, तो दिन में भी सुबह भी कर सकते हैं। मान लीजिए आपके ऑफिस है 11 बजे 12 बजे ऑफिस आते हैं, तो सुबह भी कर सकते हैं, ऐसा प्रावधान है, पर एक दिन में ज़रूर ऑफर करें। कितने हो गए?
60 हो
गए। यमुना या गंगा में स्नान करना। यमुना गंगा में स्नान नहीं कर सकते, तो एक जल में मग में हम मंत्र पढ़िए, गंगे च यमुने गोदावरी सरस्वती नर्मदे सिंधु कावेरी जलेस्मिन् सन्निधिं कुरु, वो 7 नदियों से प्रभावित हो जाती हैं। फिर गंगा जमुना यमुना सरस्वती जो भी हैं, यहाँ सब कृपया सातों के सातों नदियाँ इसमें आइए, इस मंत्र पढ़ते हैं, सातों नदियों का आह्वान हो जाता है। फिर उस मग को मिला दीजिए, बाल्टी में स्नान कीजिए, 7 नदियों का स्नान हो जाएगा आपके लिए, ठीक है। उसके बाद है फास्टिंग, फास्ट करना। तो ये फास्ट करने के लिए कई नियम हैं, आप एक कोई अपनी प्रिय वस्तु छोड़ दीजिए, जो बहुत खाते हैं आप उसके बिना रह नहीं पाते हैं, जैसे कोई स्वीट खाता हो, किसी को पनीर मटर पनीर बहुत पसंद है, किसी को चावल पसंद है, चावल के बिना प्राण निकल जाते हैं, किसी को चपाती के बिना रह नहीं सकता है ना, किसी को आदत है कुछ रोज जूस पीने की, जो भी आपको पसंद का है उसको एक महीने तक त्याग दीजिए। मैं इसका अभी पारण करने का तरीका बताऊंगा कैसे, और या एक टाइम खाइए, दिन में एक ही बार खाइए, दूसरे टाइम आप फल फ्रूट खा सकते हैं। जैसे कई भक्त करते हैं 11:30 बजे, मेरी सिस्टर करती है 11:30 बजे क्या करेंगे, वो खूब सारा फल वल जो भी खाना खा लेगी, फिर उसको शाम को 5:30 बजे फूल प्रसाद दे लेते हैं, तो बहुत अच्छा दिन निकल जाता है। अब ये नहीं कि फल ले आए 50 दर्जन केले आठ दस किलो से 50 लीटर दूध, और शाम को फिर खा लिया चार आदमी का खाना, तो व्रत नहीं है। व्रत का मतलब थोड़ा, ठीक है, तो व्रत कुछ खाने में कुछ तो कमी होना चाहिए, कुछ त्याग होना चाहिए। देखिए मैं मात्रा की बात नहीं कर रहा हूँ, कभी कभी मात्रा जरूर नहीं होती है, जरूरी होता है कि आप क्या खाते हैं। जैसे बहुत ऑयली फूड नहीं खाना, कई लोग उबले हुए फल खाते हैं, सब्जियाँ खाते हैं उसे समय पूरे, ठंडा अभी ठंडा सही चाहिए पेट को, आप खीरा खाइए, ये सब चीज़ें खाइए। जैसे आम किसी को पसंद है बहुत, कई लोग आम आम पूरा आम आदमी रहते हैं, इतना आम खाते हैं कि एकदम खास हो जाते हैं, तो वो छोड़ दीजिए, ठीक है, तो ये कीजिए। उसके बाद है फ्लैट ज़मीन पे सोना, इकड़े फर्श पर सोना, जो सख्त जो रहता है उसमें सोना, आराम से गद्दे पर सोते हैं हम लोग तो त्याग देना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आराम की ज़िंदगी नहीं जीना चाहिए। फिर है सेलिबेसी, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना, अगर मैरिड है पति पत्नी का कोई समागम नहीं होना चाहिए एक महीना, अरे महीना बहुत पवित्र रहता है, पूरी तरह सेलिब्रेट रहना चाहिए। ए सी, हाँ कर सकते, ए सी एक महीने के लिए दूसरों को दे सकते, ठीक है। और दान करना, दान भी करना चाहिए, कई लोग दान पता कैसा पता चलता है कि वो दान है वास्तव में, जब आपको तकलीफ होती है दान करने से। जैसे किसी भक्त बोला प्रभु जी 1000 रुपये दे दीजिए, हाँ ले लीजिए, दान नहीं हो, आपका मन अपने पास ही रखना, मन पैसे के साथ गए नहीं। जब बोले प्रभु जी 4000 दे दीजिए, 4000, अब उसका मन आ रहा उसके साथ, हाँ 4000 दे दीजिए, 4000 प्रभु जी ज़्यादा है, अच्छा 3.5, 3.5 भी ज़्यादा नहीं, 3.5 दे दीजिए, तब 3500 जो देता है ना वास्तव में दान। जहाँ तकलीफ होती है आपको, कष्ट होता है, तो मेरा चला गया पैसे, अब किसी को 1 रुपये में होता है उनसे भी बात है, कई लोग 1 रुपये में अटेंडिंग हो जाते हैं। नहीं नहीं, मैं आपकी बात कर रहा था, मैं पब्लिक से मांगने की बात नहीं कर रहा, मैं बता रहा हूँ कि कोई हमसे मांगे जब आपको लगता है इतने मुझे तकलीफ होगी, ये तो पुरुषोत्तम मास तो भक्त करेंगे ना, तो भक्त को जहाँ लगता है कि मैं इतना दान करूँगा तो मुझे लगता है ज़्यादा है, आपकी आपकी जहाँ से पिंचिंग पॉइंट बोलते हैं, जहाँ पिंच होगा तकलीफ हो रही है, वो दान प्रारंभ होता है। शास्त्रों में वैसे बताया गया कि 50% भागवतम के हिसाब से दान करना चाहिए, पर कलयुग में बताया गर्ग संहिता के हिसाब से 10वां अंश करना चाहिए, 10वां भाग, ठीक है। और जो जीवन भर की कमाई हो, जैसे कई लोग कमा कर धन रखा हो, हम वृद्ध हो गए हैं, रिटायर्ड हो गए, वो अपना 10वां हिस्सा किसी न किसी रूप में दान करना चाहिए, या फिर कमा रहे हो तो अपनी सैलरी का 10वां हिस्सा। याद नहीं तो कई तरीके हैं, जैसे अभी यहाँ पर प्रोग्राम्स हो रहे हैं उसमें कई दिन होते हैं, भोग ला के लाइए भगवान को, भक्तों को खिलाइए, दान दीजिए, फल ले आइए। ऐसा मत सोचिए कि प्रभु जी आज तो स्पॉन्सर है मैं क्यों दूँ, नहीं आप बल खिलाइए, भक्त खाएंगे क्या दिक्कत है ना। ब्राह्मणों को भोज खिलाना चाहिए पुरुषोत्तम मास में, बताते हैं एक ब्राह्मण को पुरुषोत्तम मास में भोज खिलाने का मतलब है 1,00,000 ब्राह्मणों को खिलाने के बराबर, इतना फायदा है। तो बुद्धिमान व्यक्ति क्या करता है, वो भाई सारे ब्राह्मणों को खिला देगा नहीं, पुरुषोत्तम मास में सब कुछ अधिक होता है, इसलिए अधिक मांस खाया जाता है कभी कभी, सब कुछ अधिक होगा, इसलिए गलत काम छोड़ दीजिए, अच्छे काम बढ़ा दीजिए। गलत काम करेंगे तो वो अधिक हो जाएगा, अच्छे काम करें तो वो अधिक हो जाएगा। चलिए और जल्दी जल्दी बता देते हैं, कितने होंगे, 13 हो गया। उसके बाद है तेरे को 15 बता देना, मैंने वहां पर कितना बताया, 15 है, हाँ माला बढ़ाना है इसमें। जैसे बताते हैं, जैसे आपने अपनी संख्या बढ़ाई है, 25 माला, 32 माला, 64, 128, 192, आपकी जो इच्छा कर सकते हैं, ठीक है, माला बढ़ाइए, संख्या को बढ़ाना चाहिए, हरे कृष्ण मंत्र का संख्या बढ़ाना चाहिए, जो भी आप करते हो उसे थोड़ा बहुत बढ़ाइए, तो चार करता है उसको आठ कीजिए, आठ करता है तो सोलह कीजिए, सोलह करता है तो पच्चीस, पच्चीस करता तो बत्तीस, कुछ ना कुछ बढ़ाना चाहिए अधिक अधिक मास। ठीक है, एक और मैं भूल रहा हूँ कुछ। हाँ, भगवद्गीता का जो पंद्रहवा अध्याय है पुरुषोत्तम योग, उसके बीस श्लोक है, रोज पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो यह ध्यान दीजिए। पच्चीस श्लोक पे अगर आप संस्कृत पढ़ना नहीं जानते हैं तो उसके शब्दार्थ पढ़िए, उसका ट्रांसलेशन पढ़िए, परपोट नहीं भी पढ़ने चल रहा है तो समय है तो परपोट जरूर पढ़िए। बीस श्लोक पढ़ने में पाँच पढ़ने लगता है, अविश्वास नहीं मानेंगे, बीस श्लोक पढ़ने में पाँच पढ़ने लगता है। तो एक भक्त हैं, बहुत अच्छा करते हैं, हर साल में जब देखा, हर बार देखा पुरुषोत्तम मास में, वो क्या करते हैं जैसे नहा के आएंगे ना ऐसे कपड़े पर तिलक लाए, सबसे पहले पुरुषोत्तम योग निकालेंगे, पढ़ लेंगे, पाँच मिनट लगता है। जैसे कई लोग ऐसे करते हैं प्रसाद ग्रहण करने के पहले, प्रसाद का प्लेट आ गया उनको याद है अरे पुरुषोत्तम मास पढ़ना है, बुक उठाया पुरुषोत्तम योग पढ़ लिया बीच में। तो ऐसा नियम बनाइए किसी एक इम्पोर्टेंट एक्टिविटी के पहले करूँगा, खासकर प्रसाद ऐसा चीज़ है भूलेंगे नहीं आप, प्रसाद या सोने के पहले या नहा के तुरंत आते हैं जब स्नान करके आते हैं। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है? धाम में भी जाना चाहिए, कितने लोग जा रहे हैं वृंदावन धाम? नहीं आ रहे, काली प्रहर तो नहीं आ रहा, पुरुषोत्तम मास। चलिए, आपको जानकर खुशी होगी अभी तक 250 लोगों ने रजिस्ट्रेशन करा लिया है, 300 हो गए, क्या बात। मैंने प्रभु जी को ऐसे ही बोल दिया था, मोहन प्रभु जी को, कि 6-7 बसेस जाएंगी, तो प्रभु जी ने अपनी सारी चीज़ें कैंसिल करके हमारे साथ चल रहे हैं, भगवान की कृपा से 6-7 बस हो जाए तो अच्छा ही, प्रभु जी खुश रहेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। किसी का प्रश्न है कोई छोटा मोटा? नहीं, दुख का मतलब, आप दुख का मतलब हो रहा कि आपने क्यों दे दिया ये सोच रहे हैं, पर यहाँ पर बोल रहा जहाँ पर आपको तकलीफ होना शुरू हो जाता है कि ये कुछ ज़्यादा लग रहा है मुझे, दान करना चाहते हैं आप, समझ रहे? एक होता है ना, मैं दान क्यों दे दिया,